नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं वैष्णवी। मुख्य समाचार। दिल्ली सरकार ने कहा, राजधानी में फिलहाल प्याज और चीनी की कोई कमी नहीं है। दिल्ली सरकार ने H1N1 इन्फ्लुएंजा के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया, दिल्ली जल बोर्ड को एशियाई विकास बैंक से 2500 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी मिली। दिल्ली सरकार कल दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4000 पात्र महिलाओं को स्वीकृति पत्र प्रदान करेगी। और रक्षाबंधन के दौरान राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर एक दिन में 47 अतिरिक्त नमो भारत ट्रेन ट्रिप्स बढ़ाने की घोषणा की। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया है कि राजधानी में फिलहाल प्याज और चीनी की कोई कमी नहीं है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में आज प्याज और चीनी की उपलब्धता और इनके दामों को लेकर एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कीमतों में आगे बढ़ोतरी की स्थिति में दिल्ली सरकार दिल्ली वासियों पर इसका अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ने देगी। ऐसी स्थिति में दिल्ली सरकार केंद्र सरकार की संस्था नेफेड से प्याज व चीनी की खरीद कर उसे राजधानी के विभिन्न स्थानों पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगी। इन वस्तुओं की बिक्री नेफेड से प्राप्त कीमत के आधार पर की जाएगी, जबकि परिवहन आदि का खर्च दिल्ली सरकार वहन करेगी। इसके साथ ही श्रीमती गुप्ता ने प्याज व चीनी की कीमतों में और वृद्धि की आशंका को देखते हुए विभाग को विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। इसके अंतर्गत राजधानी के विभिन्न स्थानों पर शिविर लगाकर लोगों को सस्ता प्याज उपलब्ध कराने की व्यवस्था पर विचार किया जाएगा। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने आज H1N1 इन्फ्लुएंजा के बढ़ते मामलों और वेक्टर जनित बीमारियों से निपटने के लिए दिल्ली स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। बैठक में डॉ. सिंह ने राजधानी में बीमारियों की स्थिति, सर्विलांस, अस्पतालों की तैयारियों, दवाइयों, टेस्टिंग सुविधाओं की उपलब्धता और जागरूकता तथा रोकथाम के लिए किए जा रहे उपायों की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
राजधानी दिल्ली में अब तक H1N1 के 2308 मामले सामने आए हैं, जबकि वर्ष 2026 में इन्फ्लुएंजा A+B के अब तक लगभग 3000 मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने सभी संबंधित विभागों को सार्वजनिक स्थलों और अधिक भीड़ वाले क्षेत्रों में जागरूकता गतिविधियों को और अधिक मजबूत करने के निर्देश दिए। उन्होंने परिवहन विभाग, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, दिल्ली कैंटोनमेंट और दिल्ली मेट्रो रेल निगम समेत सभी संबंधित एजेंसियों के माध्यम से जन जागरूकता अभियान चलाने पर भी विशेष जोर दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जारी स्वास्थ्य एडवाइजरी को पूरी दिल्ली में भी लागू किया जा रहा है, जिससे जरूरी अनुपालन और समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। इस बैठक में दिल्ली में डेंगू और मलेरिया की वर्तमान स्थिति की भी समीक्षा की गई। स्वास्थ्य मंत्री ने दिल्ली वासियों से अपील की है कि वे स्वास्थ्य संबंधी सावधानियों और स्वच्छता के उपायों का कड़ाई से पालन करें, अस्वस्थ होने पर बेवजह दूसरों के संपर्क से बचें और बीमारी के लक्षण बने रहने या फिर गंभीर होने की स्थिति में तुरंत समय पर डॉक्टरों से सलाह और इलाज कराएं। सौम्या की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए शक्ति सिंह।
दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज विधानसभा की प्रमुख युवा संपर्क पहल के अंतर्गत आयोजित संवादात्मक सत्र के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों से संवाद किया। इस अवसर पर श्री गुप्ता ने कहा कि एक सशक्त लोकतंत्र का निर्माण तब होता है जब इसके युवा नागरिक उसकी संस्थाओं, उसके विचारों और प्रक्रियाओं से सक्रिय रूप से जुड़ते हैं। दिल्ली विधानसभा सचिवालय द्वारा संचालित ये सुव्यवस्थित पहल विधायी प्रक्रियाओं को सरल और सुगम बनाने तथा जेन जी के बीच गहरी नागरिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करने का प्रयास है। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने आज मॉडल टाउन स्थित नैनी झील में ड्रोन के माध्यम से कीटनाशक छिड़काव कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री वाही ने कहा कि ड्रोन तकनीक के माध्यम से कीटनाशक का छिड़काव एक आधुनिक और कारगर उपाय है। उन्होंने कहा कि दिल्ली नगर निगम द्वारा दिल्ली को मच्छर जनित बीमारियों से मुक्त रखने के लिए फील्ड स्तर पर लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। दिल्ली के विद्युत मंत्री आशीष सूद ने आज दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड के अधिकारियों के साथ बैठक की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सूद ने कहा कि बैठक के दौरान राजधानी के पावर ट्रांसमिशन ग्रिड को मजबूत करने तथा प्रत्येक घर में बिना रुकावट बिजली की सप्लाई सुनिश्चित करने के प्रयासों पर चर्चा की गई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज बताया कि दिल्ली जल बोर्ड को एशियाई विकास बैंक से 2500 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दी गई है। एक प्रेस वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इस स्वीकृत राशि का उपयोग करते हुए जल बोर्ड ने वजीराबाद जल शोधन संयंत्र में जल आपूर्ति सुधार परियोजना के पैकेज वन के लिए लगभग 800 करोड़ रुपए और पैकेज टू के लिए 900 करोड़ रुपए से अधिक के कार्यों को मंजूरी दी गई। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली के लिए लगभग 11,400 करोड़ रुपए के निवेश को आगे बढ़ाया गया है, जिससे 36 लाख से ज्यादा दिल्ली वासियों को बेहतर जल आपूर्ति इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ मिलेगा।
अर्बन चैलेंज फंड के माध्यम से दिल्ली शहर में यूजीआरस को बनाना, वाटर लाइन नेटवर्क को खड़ा करना और डीएमए मीटरिंग की पूरी प्रक्रिया दिल्ली में शुरू करना, इन कामों को किया जाएगा। और इसके लिए दो जोन विशेष रूप से आइडेंटिफाइड किए गए हैं, वेस्ट जोन और साउथ वेस्ट जोन, जिसमें वेस्ट जोन में ट्रांसफॉर्मिंग वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्टेट ऑफ आर्ट वाटर मैनेजमेंट, इसके लिए 4,330 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
इसके साथ ही अनधिकृत पानी कनेक्शनों को नियमित करने की योजना भी 31 मार्च 2027 तक बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज निर्माण उद्योग बचाव मोर्चा के सदस्यों और निर्माण क्षेत्र के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान श्रीमती गुप्ता ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के निर्माण गतिविधियों से जुड़ी समस्याओं और सुझावों को सुना। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छ पर्यावरण और सतत विकास दोनों ही दिल्ली की आवश्यकताएं हैं। उन्होंने कहा कि सरकार और उद्योग जगत मिलकर ऐसे व्यावहारिक समाधान पर कार्य करेंगे जिससे प्रदूषण नियंत्रण के प्रयास प्रभावी हो और रोजगार तथा विकास की गति भी बनी रहे। दिल्ली सरकार ने प्रशासनिक डेटा को व्यवस्थित, भरोसेमंद और एआई के इस्तेमाल के लिए तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल शुरुआत की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में आज एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें डेटा के बेहतर इस्तेमाल के जरिए दिल्ली में तथ्यों के आधार पर फैसले लेने, लोगों की जरूरत के अनुसार पहले से सेवाएं उपलब्ध कराने और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं देने वाली सरकारी व्यवस्था को मजबूत करने पर चर्चा की गई। इस अवसर पर श्रीमती गुप्ता ने कहा कि एआई का लाभ उन लोगों तक पहुंचना चाहिए जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि डिग्री कार्यक्रमों के माध्यम से युवा छात्रों को प्रशिक्षित करने के महत्व पर बल दिया है। आज नई दिल्ली में ICAR संस्थानों के कुलपतियों और निदेशकों के सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री चौहान ने कहा कि कृषि शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI को शामिल करना समय की मांग है।
आज की परिस्थितियों के हिसाब से एग्री एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, आज की चुनौतियां हैं, क्लाइमेट चेंज की हो, ग्लोबल वार्मिंग की हो, बदलती हुई टेक्नोलॉजी हो, नए नए रोगों का प्रकोप हो, मिट्टी का खराब स्वास्थ्य हो, उन सब का समाधान भी ढूंढना है। कृषि शिक्षा प्राप्त करके जो विद्यार्थी निकलते हैं उनका कैसे भविष्य बेहतर हो और वो कृषि को कैसे बेहतर करें, किसानों को उससे कैसे फायदा हो, इस पर विस्तार से चर्चा हो रही है।
कृषि शिक्षा के बारे में श्री चौहान ने कहा कि ऐसी शिक्षा कक्षा में नहीं बल्कि खेतों में अन्य किसानों के बीच दी जानी चाहिए। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत के डिजिटल कनेक्टिविटी का मतलब केवल लोगों को जोड़ना नहीं बल्कि भरोसेमंद, सुरक्षित और मजबूत नेटवर्क तैयार करना भी है। नई दिल्ली में आज सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स C.डॉट के 43वें स्थापना दिवस पर श्री सिंधिया ने दूरसंचार क्षेत्र में C.डॉट की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की।
It will be defined by ensuring that connectivity and the networks that we evolve.
यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हमारे द्वारा विकसित की जाने वाली कनेक्टिविटी और नेटवर्क विश्वसनीय, मजबूत और सबसे महत्वपूर्ण रूप से सुरक्षित हों। आज भारत अपनी विकास यात्रा पर आगे बढ़ रहा है और साथ ही सी डॉट प्रयोगशाला से बाजार तक, अनुसंधान से विकास तक और फिर अपने विकसित उत्पादों के वैश्विक विपणन की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है।
श्री सिंधिया ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा और आपदा प्रतिरोधी संचार नेटवर्क में C.डॉट के नवाचारों पर भी प्रकाश डाला। केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज दिल्ली विद्यालयों के लिए 58वें युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 के पुरस्कार वितरित किए। इस प्रतियोगिता में बाल भारती स्कूल प्रीतमपुरा ने पहला स्थान प्राप्त किया। इस प्रतियोगिता में कुल 40 स्कूल के विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस अवसर पर श्री मेघवाल ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं में नेतृत्व क्षमता विकसित होती है। हमारे संवाददाता ने कुछ पुरस्कार विजेताओं से बात की जिन्होंने अपने अनुभव साझा किए।
मेरा नाम ऋषि त्रिखी है और मैंने प्रधानमंत्री की जो भूमिका है तो मैं बस ये चाहता था कि जितनी कॉन्फिडेंस से और जितनी एक लीडरशिप क्वालिटी जो हमारे प्रधानमंत्री में है वो मेरे में भी आए और वो स्टेज पर भी दिखे।
नमस्कार, तो मेरा नाम यशी यादव है और मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। हमारे स्कूल ने पहली बार यूथ पार्लियामेंट के इस अवसर पर पार्टिसिपेट किया है एंड हम रनिंग पार्लियामेंट्री शील्ड एंड द ट्रॉफी फॉर न्यू एंट्रेंस स्कूल जीता है।
मैंने यूथ पार्लियामेंट में एज अ सांसद की भूमिका निभाई थी और मैंने क्वेश्चन आवर में एक सवाल पूछा था। इस भूमिका से मुझे पार्लियामेंट के वर्किंग के बारे में तो पता चला ही है और प्लस जो ऑपोजिशन का जो भूमिका है पार्लियामेंट वो कितनी अहम है इसका भी पता चला है।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार ने बताया है कि कल दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4,000 पात्र महिलाओं को स्वीकृति पत्र प्रदान किए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत 1 सितंबर से प्रति माह 2,500 रुपये सीधे पात्र महिलाओं के बैंक खातों में पहुंचाए जाएंगे। दिल्ली सरकार ने बताया कि इस योजना में अब तक लगभग 9,13,000 महिलाओं ने अपना पंजीकरण करवाया है और 6,50,000 से अधिक आवेदन अंतिम रूप से जमा किए जा चुके हैं। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा और आत्मनिर्भर बनाना है। रक्षाबंधन के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC 27 और 28 अगस्त को दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर एक दिन में 47 अतिरिक्त नमो भारत ट्रेन ट्रिप्स बढ़ाएगी। ये अतिरिक्त ट्रिप्स त्योहार के दौरान यात्रियों की संख्या में होने वाली बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए चलाई जाएंगी। एक रिपोर्ट।
यह निर्णय रक्षाबंधन के दौरान लोगों की यात्रा को और सुगम तथा आरामदायक बनाने के लिए लिया गया है। NCRTC ने बताया कि इन अतिरिक्त ट्रिप्स के साथ दोनों दिन नमो भारत ट्रेनें हर 8 मिनट में उपलब्ध होंगी। इन्हें पूरे नमो भारत कॉरिडोर यानी सराय काले खां से मोदीपुरम स्टेशन के बीच परिचालित किया जाएगा, जिससे त्योहार के समय लोगों के लिए यात्रा के अधिक विकल्प उपलब्ध हो सकेंगे। अपने भाइयों को राखी बांधने जा रही महिलाओं को इन अतिरिक्त ट्रेन ट्रिप्स से विशेषकर लाभ होगा। इससे उनका प्रतीक्षा समय कम होगा, सीट की उपलब्धता बढ़ेगी और उनका समग्र यात्रा अनुभव बेहतर होगा। प्रादेशिक समाचार के लिए सौम्या शरण।
दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने आज सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्य का आरंभ किया। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने इस निर्माण कार्य की नींव रखी। ये निर्माण फेज 5A के अंतर्गत जनकपुरी पश्चिम से आरके आश्रम मार्ग तक मौजूदा मेजेंटा लाइन के विस्तार के एक भाग के रूप में किया जा रहा है। दिल्ली मेट्रो ने बताया कि ये मेट्रो स्टेशन एक भूमिगत स्टेशन होगा और महत्वपूर्ण इंटरचेंज सुविधा प्रदान करेगा। इस स्टेशन को भूमिगत सबवे के माध्यम से मौजूदा शिवाजी स्टेडियम एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन स्टेशन और राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के साथ निर्बाध रूप से जोड़ा जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईद मिलाद उन नबी की पूर्व संध्या पर लोगों को बधाई दी है। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ईद मिलाद उन नबी पैगंबर मोहम्मद साहब के उपदेशों को याद करने का अवसर है। राजधानी दिल्ली में आज तेज बारिश हुई और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने बताया है कि कल बादल छाए रहने और सुबह से दोपहर के बीच कुछ स्थानों पर बहुत हल्की से हल्की वर्षा होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली सरकार ने कहा राजधानी में फिलहाल प्याज और चीनी की कोई कमी नहीं है। दिल्ली सरकार ने H1N1 इन्फ्लुएंजा के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया दिल्ली जल बोर्ड को एशियाई विकास बैंक से 2,500 करोड़ रुपए के ऋण की मंजूरी मिली। दिल्ली सरकार कल दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4,000 पात्र महिलाओं को स्वीकृति पत्र प्रदान करेगी और रक्षाबंधन के दौरान राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर एक दिन में 47 अतिरिक्त नमो भारत ट्रेन ट्रिप्स बढ़ाने की घोषणा की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।